नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर मोदी सरकार के सामने तल्ख तेवर दिखाए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जो भी आरोप लगे हैं उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने दो टूक कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उनकी जांच होना जरूरी है। भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी हिस्सों में सप्ताह भर चलने वाला सिम्बेक्स नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू किया है, जिसके लिए दोनों देशों ने एक एक पनडुब्बी तैनात की है। बृहस्पतिवार से शुरू हुए वार्षिक अभ्यास में भारतीय नौसेना का राजपूत श्रेणी का विध्वंसक INS रणविजय, कामोटा श्रेणी का जंगी पोत INS कवर्ती और एक P-8I समुद्री गश्ती विमान भाग ले रहा है। दोनों देश 3 दशक से ये वार्षिक अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास में भाग ले रहे रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के युद्ध पोतों में 2 फॉर्मिडेबल श्रेणी के युद्ध पोत RSS स्टॉलबर्ट और RSS टेनेशियस शामिल हैं। RSN के फ्लीट कमांडर कर्नल क्वान होन चुयोंग और भारत के पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर ने इस द्विपक्षीय अभ्यास के उद्घाटन समारोह में इसके 30वें संस्करण के स्मारक लोगों का अनावरण किया। कनाडा के एक अधिकारी ने कहा कि सिख कनाडाई व्यक्ति की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोप कनाडा में भारतीय राजनयिकों की निगरानी तथा एक अहम साझेदार की ओर से मुहैया कराई गई खुफिया जानकारी पर आधारित है। कनाडा के अधिकारी ने बृहस्पतिवार को एसोसिएटेड प्रेस से कहा कि भारतीय अधिकारी और कनाडा में भारतीय राजनयिकों की बातचीत तथा खुफिया जानकारी साझा करने वाले समूह फाइव आइज के एक सदस्य ने इस संबंध में जानकारी मुहैया कराई। फाइव आइज में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। अधिकारी ने नाम ना उजागर करने की शर्त पर यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी कि किस सहयोगी देश ने यह गोपनीय जानकारी साझा की या बातचीत में क्या था और इसका पता उन्हें कैसे चला। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने सबसे पहले खुफिया जानकारी का विवरण दिया था। भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी अलगाववादी नेता निर्झर की हत्या को लेकर कूटनीतिक विवाद जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की रूस के आक्रमण के खिलाफ पश्चिम के सहयोगी देशों का समर्थन हासिल करने के अपने प्रयासों के तहत शुक्रवार को कनाडा की संसद को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यालय ने बताया कि जेलेंस्की वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और सांसदों से मुलाकात के बाद ओटावा पहुँचने वाले हैं। ट्रूडो के जेलेंस्की का अभिवादन करने और शुक्रवार को संसद को संबोधित करने की भी संभावना है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद जेलेंस्की की यह पहली कनाडा यात्रा है। इससे पूर्व युद्ध शुरू होने के बाद उन्होंने कनाडा की संसद को ऑनलाइन संबोधित किया था। जेलेंस्की और ट्रूडो ओटावा से टोरंटो जाने वाले हैं, जहां वो यूक्रेनी समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। भारत में वांछित और भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की सबसे बड़ी और सबसे भीड़ भाड़ वाली जेलों में से एक से लंदन में एक निजी तौर पर संचालित जेल में स्थानांतरित किया गया है। नीरव भारत में धोखाधड़ी और धन शोधन के मामलों में वांछित हैं। बृहस्पतिवार को ये जानकारी मिली। नीरव को असफल प्रत्यर्पण अपील कार्यवाही के संबंध में लंदन में उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए 15,247 पाउंड के जुर्माने के संबंध में मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई के लिए पेश होना था। हालांकि मामले को अंतिम क्षण में नवंबर तक के लिए स्थगित करना पड़ा, क्योंकि पूर्वी लंदन में बार्किंग साइड मजिस्ट्रेट अदालत में नीरव को तकनीकी कारणों से वीडियो लिंक से पेश नहीं किया जा सका। अदालत के एक अधिकारी ने कहा उसे आंतरिक स्थानांतरण के तहत HMP वैंसवर्थ से HMP टेम्स साइड में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके बारे में अदालत को आज तक जानकारी नहीं थी। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया कि उनके लोगों को पूर्ण और वैध राष्ट्रीय अधिकार दिए बिना पश्चिम एशिया में कोई शांति स्थापित नहीं की जा सकती। अब्बास ने बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र में करीब 25 मिनट के अपने संबोधन में कहा, जो लोग सोचते हैं कि फलस्तीनी लोगों को उनके पूर्ण तथा वैध राष्ट्रीय अधिकार दिए बिना पश्चिम एशिया में शांति स्थापित हो सकती है, वो गलत हैं। फलस्तीन के 87 वर्षीय नेता का भाषण पिछले सत्रों में दिए उनके भाषणों से मिलता जुलता था। उन्होंने इसराइल पर फलस्तीनी अधिकारों के कई उल्लंघनों का आरोप लगाया और शांति प्रक्रिया बहाल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आह्वान किया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए पड़ोसी देश के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित चीनी नेतृत्व से बातचीत के लिए 23 सितंबर से चीन का 8 दिवसीय दौरा करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रचंड चीन के पूर्वी शहर हांगझोउ में होने वाले 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शिरकत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश साउद के साथ प्रचंड फिलहाल संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में शामिल होने के लिए अमेरिका में हैं, जहां से वो 23 सितंबर को चीन की अपनी आधिकारिक यात्रा के लिए रवाना होंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री प्रचंड चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग के निमंत्रण पर 23 से 30 सितंबर तक चीन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।